आज हमारी भक्ति का दूसरा दिन कहीं या तीसरा दिन, हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता मोहन सिंगल जी हमारे बीच हैं। आप हम सभी इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे अपनी अल्प छोटी आयु में ही ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान को जीवन का ही एक हिस्सा बना दिया। लाइफ ही जो है वो पूरी ज्ञानमय और योगमय है, जीवन ही यही है। जो हम सभी जानते हैं, आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, कई प्रकार के समय प्रति समय बहुत अनेक प्रकार की यूनिक सेवाएं आपने की हैं, जिसके फलस्वरूप सफलता के साथ साथ आपको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और ज्ञान का मनन चिंतन भी आपका बहुत अच्छा है। तो अभी आपके सामने अनुभवों के आधार पर बाबा का हाथ और साथ कैसे बना रहे, क्योंकि बाबा हमेशा हमारे साथ है, ये बाबा ने एक बार कहा था, और बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। तो वो कैसे हमेशा हम अपने जीवन में अपने कार्य में कर्म करते हुए उसको अनुभव करें, महसूस करें, उसके बारे में अनुभव के आधार पर आपके सामने अपने विचार रखेंगे बाबा का हाथ और साथ।
ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा कि हम सब ने सुना है यज्ञ के आदि में, बाबा और सब ब्राह्मण वत्स मिलकर के योग का उच्चारण किया करते थे, योग के साथ ओम ध्वनि का। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर के उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओ अभी जब हम आ रहे थे तो बहन जी के कुछ वाक्य सुनाई पड़े कि अंत मति सोगति, और अंत में बाहर भले चाहे जितनी भी हलचल हो लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, जो भी बाबा ने कहा है, यहाँ का स्थूल बातें हो, चार धाम की बात हो, अथवा जो भी बाबा ने कहा है कि और कहीं भी बुद्धि न हो, क्योंकि सारा दारोमदार ही अंत समय पर है। और उस समय जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे तो और कोई भी स्मृति में न हो, न देह का धर्म, संबंध, संपत्ति, साधन, कुछ भी नहीं, बस हम और बाबा। तो उस पर ही अंतिम, उस क्षण पर सारा दारोमदार है हमारे आगे आने वाले सारे जन्मों का। लौकिक दुनिया में भी देखते हैं, जो जिन्होंने जॉब किया हुआ है ना, नौकरी गवर्नमेंट की या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जब वो रिटायर होते हैं तो एक चीज होती है, कौन सी, लास्ट पे सर्टिफिकेट जैसी, LPC, और उसके आधार पर ही सारा आगे के बचे हुए जन्म का, ग्रेजुटी हो, कोई पेंशन हो, कोई प्रोविडेंट फंड फंड का हो, कुछ भी, सब कैलकुलेट होता है। लास्ट डे जो भी वो पे ड्रॉ करता है, अंतिम दिन जो तनख्वाह होती है, उसके आधार पर ही पूरा कैलकुलेशन होता है, बचे हुए जन्म का सारा फाइनेंशियल कैलकुलेशन। ऐसे ही हमारा भी लास्ट उस क्षण पर आधारित है, जो अंतिम श्वास जब हमारा निकलेगा तो वो अंतिम श्वास ऐसा निकले कि जैसा बाबा चाहते हैं, जिससे जो भी आदि से लेकर हमारे जन्म हैं, संबंध हैं, सब उसके आधार पर हो, बहुत अच्छे हों। और उन सब का आधार क्या है? हमारा जो है मृत्यु पर कंट्रोल, अंतिम क्षण पर कंट्रोल, जो हमारी मतलब अंतिम क्षण हो, अंतिम श्वास हो, हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करें, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। अगर दुनिया वालों की तरह ही शरीर छोड़ा, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आई, कोई अर्थक्वेक आया, या कोई बीमारी के वशीभूत होके कोई शरीर छोड़ा, तो हम में और दुनिया वालों में अंतर ही क्या रहा? हम जो मन जीत, माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत, जो जीत जीत है कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हमारा अंतिम श्वास निकले, तो ये हमारे कंट्रोल में हो, इच्छा मृत्यु का। और वो तब होगा, अंतिम श्वास भी किस आधार पर होगा? जैसा हमारा अभ्यास होगा इस ब्राह्मण जीवन में, जैसा हमारा अभ्यास होगा, अंतिम श्वास भी हमारा उस आधार पर होगा। तो वैसे तो ज्ञान की बहुत बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं, आप सभी ब्राह्मण वत्स बैठे ही हैं, और बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे सब पवित्र तो बन गए हैं, योगी बन गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए हैं, अब क्या बनना है? ब्रह्मचारी तो बन गए और अब ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम। तो जिससे कि हमारा भी अंतिम श्वास ब्रह्मा बाबा की तरह हो, तो उन सब के लिए एक एक शब्द की बस स्मृति चाहिए। वैसे तो बहुत सारा ज्ञान की बातें बाबा ने बताई हैं, तो वो एक शब्द कौन सा है? लौकिक दुनिया में भी सफलता के लिए वो शब्द काफी अच्छा समझा जाता है, और ब्राह्मण जीवन में भी वो एक शब्द कौन सा है जिसके आधार पर हमारी सफलता सुनिश्चित है? कौन सा एक शब्द? अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में भी यूज होता है, वो है बैलेंस। बैलेंस शब्द जो है उसके आधार पर ही हमारी पूरी सफलता जीवन की निश्चित है। और ये टॉपिक आज का उससे ही लगता है, बाबा का हाथ और साथ, पूरा टॉपिक उसके आधार पर ही है। तो सब जानते हैं किन किन चीजों का बैलेंस, सभी पुराने बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, किन चीजों का बैलेंस? याद और सेवा है, लौकिक अलौकिक है, प्यार न्यारा और प्यारा आदि आदि, ये सभी हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें सब सुना रहे हैं, इन सब चीजों का बैलेंस। सबसे पहले तो ये जो आत्मा और शरीर, बाबा ने कहा ये दो चीज है ना, इसका भी बैलेंस। अक्सर करके क्या होता है, कई बार आत्मा का पलड़ा भारी हो जाता है, शरीर का पलड़ा हल्का हो जाता है, कई बार इसका उल्टा, क्योंकि प्रवृत्ति में रहते हैं ना, तो कभी रूहानी प्रवृत्ति जो आत्मा से संबंधित है बहुत नशा चढ़ जाएगा। अभी भी आप सब भट्टी में आए हो, बहुत अच्छा रूहानी नशा है, तो कई बार नशा तो रहना ही चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ जो शरीर का ये बैलेंस, जो ये प्रवृत्ति है, एक है भौतिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक, तो इसका दोनों का बैलेंस ये एक बहुत आवश्यक है। और इसको दर्शाया गया है लौकिक रीति से, डॉक्टर लोग भी कहते हैं शरीर के अंदर ना, जैसे ये शरीर का बैलेंस है, किस आधार पर शरीर का बैलेंस है, ये दोनों टांगों के आधार पर, दो टांग हैं, बैलेंस ठीक है, अगर एक टांग होती है उससे ही चलेंगे तो वो बैलेंस ठीक नहीं रहेगा। तो ये दोनों टांगे कौन सी हैं, किस बात का सूचक है, जब ये बैलेंस हमारा नहीं रहता है तो कई बार ब्राह्मणों का अनुभव है कि जीवन में बहुत सब कुछ है, ज्ञान योग भी सुनते हैं, लेकिन वो खुशी स्थायी नहीं रहती है, कायम नहीं रहती है, कई बार जीवन में मायूसी का अनुभव होने लगता है, उदासी का अनुभव होने लगता है। तो इसी बात को दो लाइन से ऐसे समझा जा सकता है, किसी ने कहा है कि हो के मायूस नयो, हो के मायूस नयो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। ये दोनों पांव क्या है, एक है फिजिकल वैल्यूज जीवन की, एक है स्पिरिचुअल वैल्यूज, भौतिकता और आध्यात्मिकता, क्योंकि सभी ज्यादातर प्रवृत्ति वाले बैठे हैं, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का बैलेंस। तो ये बैलेंस अगर बना रहता है, कोई भी बैलेंस बना रहना, उसकी निशानी क्या है, हरेक चीज का हम लोगों को टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहना चाहिए अपना, कि वेदर वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, हम सही जा रहे हैं। थोड़ा भी अगर वेरिएशन हो जाता है ना, तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। यहां से जैसे जब रॉकेट छोड़ते हैं, मंगल ग्रह तक भी छोड़ा, चंद्रमा तक, कोई भी, तो जो इंजीनियर हैं, टेक्निकल है, मैथमेटिक्स वगैरह जानते हैं, जब कोई छोड़ा जाता है तो यहां से अगर बहुत कम भी अंतर रहा, 0.000 डिग्री का भी अंतर थोड़ा सा, तो लक्ष्य तक पहुंचने में वो हजारों माइल का डिफरेंस हो जाता है, प्रोजेक्टाइल जब फेंका जाता है। तो इसीलिए उसमें भी प्रोविजन होता है, बीच बीच में करेक्शन, थोड़ा भी अपना लक्ष्य से जरा हटा, फिर करेक्शन कर दिया, फिर लक्ष्य पर आ जाए, फिर लक्ष्य पर जा रहा है, फिर थोड़ा सा फर्क हुआ, फिर लक्ष्य पर, ऐसे ही बीच बीच में ये जो भट्टियां होती हैं, इसका लक्ष्य ये है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अंदर जाके देखें कि हम जो चल रहे हैं, ऊपर रीति से तो लगेगा ठीक है, अमृत वेला भी करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ है, लेकिन जब डीपली इंट्रोस्पेक्शन, एकांत में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, इस जगह जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करता है वो उस तक हम अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। इसीलिए कहा गया है कि हाँ, बुद्धि का विकास एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। तो एकांत में भी रहे और संगठन में भी रहे। संगठन में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संगठन में जब हम रहते हैं तो हमारे चरित्र का उत्थान होता है। एकांत में व्यक्ति चाहे ना अलबेला हो जाता है बहुत, शारीरिक एकांत, लेकिन बुद्धि का एकांत चाहिए डेवलपमेंट के लिए, बुद्धि के लिए। भले हम चाहे संगठन में रहें, लेकिन बीच बीच में एकांत बुद्धि का। दादी जानकी अभी भी कहते हैं कि अभी भी मैं लक्ष्य यही रखती हूं कि सुबह जब से उठते हैं 4 से 8 बजे तक बिल्कुल एकांत रहना, कोई फोन अटेंड करना न कोई और बातचीत करनी, बस मुरली सुनी और उसके बाद आधा घंटा उसका मनन चिंतन। तो इसलिए बुद्धि का एकांत एक तो बहुत आवश्यक है लगातार बाबा का हाथ और साथ का अनुभव करने के लिए, एक है ये बुद्धि का साथ। दूसरी बात, एक आवश्यकता और बहुत है, वो है विचार सागर मंथन। मुरली तो हम सुनते हैं सब, लेकिन उन किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी गहराई में जाकर विचार सागर मंथन करना ये बहुत आवश्यक है, तभी मक्खन निकलता है। कई कहते हैं कैसे करें विचार सागर मंथन, तो बाबा ने क्या युक्ति बताई है, बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने समय प्रति समय बाबा बताते रहते हैं। कोई कहता है मेरे बाबा बुद्धि चलती नहीं है मैं क्या करूं, तो बाबा ने क्या बताया उसके लिए, बहुत सहज बात हम सब के लिए। बाबा ने कहा चित्रों के सामने जाके बैठ जाओ, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आदि और अनादि स्वरूप में स्थित करो जाओ। अब याद नहीं रहती कई बार, चलो सोचा थोड़ी देर कुछ सेकंड कुछ मिनट फिर बुद्धि कहीं और भाग गई, तो बुद्धि न भागे उसके लिए विचार सागर मंथन कैसे होगा, चित्र के सामने। मानो हम कल्प वृक्ष के सामने जाके बैठ जाते हैं और बस कल्प वृक्ष का जड़ से बीज से देखें, देखो इसका बीज रूप ये शिव बाबा और मैं बाबा के साथ जड़ में, इस पूरे संसार के जो कल्प वृक्ष है इसकी जड़ में बैठे हूँ, वो जो आठ बाबा मम्मा के साथ अगर जो भाई बहन दिखाएं उसमें हम अपने को विजुअलाइज करें, अपने को स्थित करें और उसमें देखें हाँ मैं जड़ में बैठी हुई हूँ आत्मा और मेरे आधार पर ये पूरा संसार है, पूरा सृष्टि वृक्ष है और बस मैं ये इमेजिन करूं कि ये इसका पूरा जो जड़ में मैं स्थित हूँ और इस कारण से ही इसके जड़ से के थ्रू ही पूरे वृक्ष में जो सब भोजन का जल का जो संचार होता है वो जड़ से शुरू होकर पत्ते पत्ते तक पहुंचता है, मेरे आधार पर ये संसार ठहरा हुआ है। और चित्र का वर्णन अपने आप करें, जैसे किसी को कल्प वृक्ष समझाते हैं सप्ताह कोर्स में, बस अपने से अपने को रिपीट करें और थोड़ा थोड़ा ऐसा जब होगा तो क्या होगा कि फिर चित्रों के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बुद्धि का ऐसा खुल जाएगा कि बस जो हम विजुअलाइज करना चाहेंगे वो विजुअलाइज हो जाएगा और मनन चिंतन की एक श्रृंखला चल पड़ेगी बुद्धि के अंदर, नए नए पॉइंट्स की टचिंग होगी। बाबा कहता है बिल्कुल वैसा ही अनुभव करेंगे और इस प्रकार से एक ये जो है जो बुद्धि के अंदर, तो ये जो फिजिकल और मेंटल इसका बैलेंस, मेडिकल आज डॉक्टर भी कहते हैं भाई शरीर में ना ब्रेन में भी लेफ्ट एंड राइट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट अपना लॉजिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन साइंस फाइनेंस सब कुछ चीज जो फिजिकल चीज है उनको डील करता है, लेकिन राइट पार्ट जो है वो भावनाओं को इमोशंस को वैल्यूज को इनको डील करता है, तो इन दोनों का बैलेंस। और जो बाबा कहता है गंभीरता भी हो रमणीकता भी हो, दो डाइवर्सिफाइड चीज का बैलेंस ये बल्कि काफी कठिन होता है, इसीलिए ये बैलेंस बहुत आवश्यक है इसके अंदर। और इस जब ये बैलेंस अगर होने लगता है ना, हम तो देखते थे ब्रह्मा बाबा को हाँ कितना एक तरफ ज्ञान की गुह्यता गहराई आप मुरलियों में जाओ और दूसरी तरफ बाबा चलो बच्चे पिकनिक पर चलते हैं चलो बैडमिंटन खेलो आओ बच्चे ये करते हैं बिल्कुल स्थूल रीति से, जैसे बच्चों के साथ बच्चा बड़ों के साथ बड़ा छोटों के साथ छोटा, यही विश्व महानता है आवश्यकता है विश्व महाराजन की, सभी के दिलों को जीता हो चाहे छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो, उसके साथ हम वैसा स्वरूप धारण कर सके। तो इसीलिए एक ये बैलेंस की आवश्यकता है। इसके लिए क्या आवश्यकता है? और तो मुख्य जो बैलेंस चाहिए वो हम लोग आपस में विचार करें, आप सबने बताए, लेकिन डेली टाइम टू टाइम बैलेंस जिसकी आवश्यकता है, पहला है अलर्ट एंड रिलैक्स का बैलेंस। अलर्ट माने जागरूक अवस्था, और रिलैक्स माने उसके लिए कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। अलर्ट एंड रिलैक्स, इसका बैलेंस चाहिए। उससे क्या होगा? जब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड होगी तो उसमें बड़ा आराम होगा। रिलैक्स स्टेट माइंड की कब होती है? नींद है, अच्छी नींद आ रही है, गहरी, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। अलर्ट कब होती है? जब हम चेतन होते हैं, एक्टिव होते हैं, जागरूक होते हैं, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है किसी में, अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो अलर्ट एंड रिलैक्स का, दोनों का बैलेंस जब होता है, और ये कब होता है? यही तो कर्मयोगी की अवस्था है। कैसे? कि जब आदमी का ईईजी, व्यक्ति का ईईजी निकाला जाता है, तो जब एक्टिव है और अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स वगैरह होते हैं, स्लीप में है, डेल्टा वेव्स वगैरह है, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, और एक्टिव है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, तो अल्फा और डेल्टा का बैलेंस बिल्कुल हो, काम कर रहे हैं। यदि जानकी का निकाला गया तो बस हर स्टेट में डेल्टा स्टेट, काम भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन तो ऐसी स्टेट बाबा चाहता है। ये इस बात का प्रमाण है कि बाबा का हाथ और साथ हमारे साथ है। हाथ जैसे बहन जी बता रहे थे हमारे सिर के ऊपर वरदानी हस्त, और साथ माने जो बाबा ने कहा कंबाइंड स्टेट, हमारी और बाबा की दोनों की कंबाइंड स्टेट। रोज इसकी प्रैक्टिस करें। जब शाम का योग करते हैं, बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले भी मैं चक्कर लगाने निकलता हूं, और नुमा शाम के वक्त भी मैं देखता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस नुमा शाम को अब योग करेंगे ना, तो नुमा शाम के वक्त बैठ के बाबा को करे, हाँ बाबा चलो आओ हम और आप चक्कर लगाने निकलते हैं। विजुअलाइज करो, मैं और बाबा, हम लोग हाथ में हाथ डाल के पकड़ के बस ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ने कहा है अगर इस स्थिति में चक्कर लगाने का अभ्यास होगा तो दुनिया वालों को अनुभव होगा हमने उड़ते हुए फरिश्ते देखे। वो देखेंगे, लेकिन हमारी अपनी स्टेट ऑफ माइंड इतनी डीप हो, इतना ऐसा गहरी हो कि हम हर व्यक्ति के दिल तक पहुंच सकें, हमारा भी आशीर्वाद का हाथ, वरदानी हाथ उन आत्माओं की तरफ हो, जिसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हें उन भटकती हुई, तड़पती हुई, दुखी आत्माओं की आवाज क्या तुम्हें कानों में सुनाई नहीं देती? उन आत्माओं की आवाज अब तुम्हारे कानों में सुनाई देनी चाहिए, दांतों की नींद फिट जाए। और अभी दो दिन से भी बाबा कह रहे हैं ना, रात को जैसे जागो, नींद को जीतने वाले बच्चे बनो। तो इसलिए ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हो, अज्ञानी लोग भी जब रात को कुछ होता है, मुझे याद है एक पहले एक भरत व्यास हुआ करते थे गीतकार, आप सबने सुना होगा फिल्मों में, बहुत अच्छे गीतकार। तो काफी साल पहले 80s की बात है, तब हमारा ये सब ज्ञान सरोवर ये सब नहीं था, हम कोई भी बड़े फंक्शन किया करते थे तो पोलो ग्राउंड में लेकर के किया करते थे, वहां पर जो स्टेज बना हुआ है और सामने कुर्सियां, तो वहां हम लोगों ने 1986-88 वगैरह की बात है, तब गीता के भगवान के ऊपर एक कार्यक्रम रखा था, उसमें ये भरत व्यास आए थे। तो नेचुरली शाम को तो फंक्शन वगैरह हुआ, और उन लोगों से कहा गया भरत व्यास जी से, कल हमारा शिविर होगा, कल से शिविर शुरू, आप उस शिविर में आना। तो उन्होंने कहा कितने बजे? बताया गया, बहनों ने बताया सुबह ऐसे 6:30। कहते हैं ये तो हमारे से संभव नहीं होगा, रात को आप हमसे कितने बजे, 1 बजे तक, 12, 1, 2 बजे तक जगवा लो, लेकिन सुबह हम नहीं उठ सकते। तो उन्होंने बताया कि वे कैसे, अमृत वेला का महत्व तो है, बहनों ने बहुत बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, जैसे उन्होंने कहा। फिर खुद ही उन्होंने कहा कि कभी कभी जब हमें नींद नहीं आती है या सोते सोते सडनली नींद जाग जाते हैं हम लोग, और बहुत कोशिश करने पर नींद नहीं आती, तो मैं क्या करता हूं, मैं उठ जाता हूं और तब कुछ गीत वगैरह लिखता हूं। और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने जो गीतों का ना लिस्ट दिखाई, ये सारे गीत जैसे भरत व्यास के ही हैं, जो मुरली में साकार मुरली में गीत हैं कि महफिल में जल उठी क्षमा या नदिया ना पीती कभी अपना जल, ऐसे ऐसे उन्होंने 12-15 गीत बताए। और उन्होंने कहा कि जैसे मुझे कोई उठा रहा है, नहीं उठो, नहीं सो सकते तुम, तुम्हें उठो, वो उठता हूं मैं, फिर उठ के क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही है, तो मैं गीत लिखता हूं। और ये गीत की जो लिस्ट बताई, और बिल्कुल वही टैली करती है जैसे बाबा कहता है कि बाबा ने ये गीत लिखवाए हैं, तो ये उन्होंने कन्फर्म किया भरत व्यास। और बाद में उनका लड़का अरविंद व्यास भी है, जो गुजराती गीतों में फिल्म वगैरह ये लिखते हैं, वो भी यहां पर आ चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को काफी कन्फर्म किया। तो बाबा ने वो उस समय जो अपना कार्य कराया, हाँ, ऐसे ही अब हम बच्चों का काम है, जब उस वक्त जगेंगे तो दुनिया की अनेक तड़पती आत्माओं को, बुद्धि को टच होगा, और वो टच होके वो जस्टिफाई करे, वेरीफाई करे कि हाँ मुझे ये दर्शन हुआ, ये साक्षात्कार हुआ। तो ये जब वो दुनिया वाले इस बात को कहेंगे, इसका मतलब हमारा योग का, याद का चार्ट जो है वो ठीक हो रहा है, बाबा का हाथ और साथ है और उन दुनिया की आत्माओं तक पहुंच रहा है। कोई भी चीज का जस्टिफिकेशन हो, मानो हमें बुखार है और अगर हमने डॉक्टर की दवाई ली, ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी दवाई नहीं लग रही, अगर ठीक हो रहा है इसका मतलब दवाई लग रही है और वो उससे ठीक हो रहा है। ऐसे ही उन आत्माओं तक पहुंच रहा है और बड़ा शांति का एहसास हो रहा है, और जैसे वो कहती हैं कि हाँ हमने उड़ते हुए फरिश्ते देखे, तो इसका मतलब हमारा याद का बल बढ़ता जा रहा है। और ये एक हमारा अलर्ट और रिलैक्स का जितना जितना बैलेंस होता रहेगा, ये अंत समय तक हमें काम आता रहेगा। एक दूसरा बैलेंस चाहिए, बिजी और इजी का बैलेंस। बिजी तो रहेंगे, बाबा ने कहा अभी जितना सेवा बढ़ती जाएगी बहुत बच्चे बिजी, एक एक को 10-10 का काम करना पड़ेगा, लेकिन ब्यूटी तब है बिजी के साथ इजी रहे, मन में बिल्कुल भी तनाव ना हो, कोई ये ना हो ये काम करना है, ऐसी भागा दौड़ी है। दादियों को देखो, हम तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ भी बहुत रहे, हमेशा दादी कहते थे कि कई कहते थे दादी आपको कैसे इतना हेड हो, तो बाबा दादी क्या बोलती थी, मैं तो कभी हेड समझती नहीं, क्योंकि जो हेड समझते हैं उन्हें क्या होता है, हेडेक होता है। तो इसीलिए कभी भी ये काम है ये इसके निमित्त तो नहीं है भले, लेकिन कोई वो बात हमें स्ट्रेस क्रिएट ना करे। इस कारण से बिजी के साथ इजी का बैलेंस, ये बैलेंस एक बहुत जरूरी है। और तीसरा बैलेंस क्या जरूरी है, चीयरफुल के साथ केयरफुल का बैलेंस। काम करना है, केयरफुल रहना है, ऐसे नहीं कि हम केयरफुल ना रहे, वो हो जाए इजी हो जाए और गलती हो जाए, काम में नुकसान हो जाए, नहीं, केयरफुल भी रहे लेकिन उस केयर में ही हमारा पूरा बुद्धि अटेंशन हो, चीयरफुल खुशनुमा चेहरा, किसी को ये ना रहे इनका स्ट्रेसफुल चेहरा है, जो बाबा कहता है चलन और चेहरे से सर्विस होती रहे। और ये तब होगा जब केयरफुल और चीयरफुल इसका बैलेंस हमारी डे टू डे लाइफ में रहे, और टाइम टू टाइम चेक करते रहे ये बैलेंस की लिस्ट हमारे पास हो, और हर कर्म में सुबह से शाम तक जो कर्म करे उसमें ये बैलेंस इसको अनुभव करते रहे। चौथा बैलेंस और कौन सा चाहिए, इन्वॉल्वमेंट और डिटैचमेंट का बैलेंस। डिटैच्ड भी रहे लेकिन इन्वॉल्व भी रहे, ये कैसे होगा, गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करें फल की इच्छा न करें। अब ये कैसे होगा? फल की इच्छा तो बाद में, पहले होती है, कर्म हम बाद में करते हैं। आप यहां भट्टी में आए तो फल था कि हाँ वहां जाके भट्टी करेंगे, एकांत रहेगा और हमारी बहुत आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये फल की इच्छा माइंड में थी, तो आपने कर्म किया, रिजर्वेशन कराया, यहां तक आए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फल की इच्छा न हो। सटल ही सूक्ष्म रीति से तो माइंड में रहेगा ये, लेकिन इसका भाव क्या है कि जब हम कर्म करें तो फुली इन्वॉल्व हो, मन से, बुद्धि से, शरीर से, हर रीति से इन्वॉल्व हो, फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अवर माइंड एंड स्पिरिट एंड सोल जो कहा जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो, जब फुल इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब रिजल्ट हो तो हम डिटैच कर लें अपने को। रिजल्ट के वक्त अगर हमने ये माइंड में रहा, अरे मैंने ये किया, ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, और इफ रिजल्ट इज नॉट एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छा के अनुरूप अगर रिजल्ट नहीं है तो क्या होगा? वी विल कम डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जैसे कि हमें निराशा हो जाएगी जीवन में और दुखी और अशांत हो जाएंगे। तो डिटैच्ड और इन्वॉल्वमेंट दोनों का बैलेंस, कर्म करते वक्त फुली इन्वॉल्व लेकिन रिजल्ट के वक्त फुली डिटैच्ड। और जितना हम डिटैच होंगे उससे क्या होगा, रिजल्ट जो भी आएगा वो हमें बड़ी संतुष्टि का अनुभव, भले हमारे अगेंस्ट भी होगा रिजल्ट, लेकिन हम उससे डिप्रेशन में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं, टेंशन में नहीं कि रिजल्ट हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था। बाबा कई बार बोलता है ना, इतना बड़ा बड़ा मेला करते हैं, बंबई में भी जब मेला किया था तो आके दादियों ने बताया, बाबा इतना खर्चा हुआ, इतना ये, एक भी आत्मा नहीं निकली। एक आत्मा निकली थी बंबई मेले से, कौन सी? एक अफ्रीका के राम भाई कोई होते थे जो फिर अफ्रीका में सेवा के निमित्त बने, और वो लास्ट डे जब मेला खुल चुका था, देवी की प्रतिमा वगैरह खुलनी बाकी थी, उस वक्त वो आए, उन्होंने देखा, वही उससे तीर लग गया और फिर एक आत्मा के थ्रू पूरे अफ्रीका की जैसे सेवा है। भले एक भी निकला लेकिन एक इतने पूरे कंटिनेंट की सेवा के निमित्त बना। बाबा वाइडर रिजल्ट देखता है, हम जो है बहुत क्षणिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हम क्वालिटेटिव नहीं देखते, क्वांटिटेटिव देख लेते हैं। बाबा तो क्वालिटी, इसीलिए बाबा कहता है मैं आके राजा महाराजा, जो बाबा जो है, देखो साकार बाबा के समय भी ना जो निकले विश्व महाराजन महारानी हमारी दादियां, उसके बाद फिर दूसरा पुर, तीसरा पुर, और अभी जैसे अंतिम समय का पुर चल रहा है जो राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए जो भी है उसके अंदर डिटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट की फीलिंग रहेगी तो क्या होगा, अंतिम समय भी चारों तरफ से हम घिरे हुए होंगे, हाहाकार होगा, तूफान होगा, हल्ला होगा, और क्या बचाओ ये करो, ब्लड बह रहा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर हमें डिटैचमेंट का अनुभव होगा तो उस समय भी हम शरीर से डिटैच हो जाएंगे। इसलिए अंत समय भी सफलता वही पाएगा जिसने लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक इसका अभ्यास किया होगा। और कौन सा चाहिए? बाबा ने बताया बैलेंस, ये जो है आप बता रहे थे ना, लव एंड लॉ का बैलेंस। संगठन में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, प्रवृत्ति में रहना है, लेकिन उसमें रहते हुए भी जहां कहां जहां पर एक तरफ डिसिप्लिन का भी अनुभव करना है, डिसिप्लिन में भी, लव में, लॉ में भी, और दूसरी तरफ लॉ, लव प्रेम का सागर बाबा है, प्रेम की वो अनुभूति करानी है। जो अब बाबा ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, दादियां भी है, देखो हर एक के अपने अपने सेवा में लगे हैं, कर्म भोग का हिसाब किताब सबका चुकतू हो रहा है, लेकिन प्रेम की हम मूर्ति बने। कहा है ना एक बहुत अच्छा, खुसरो एक बहुत बड़े वो होके गए हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा वो डूब गया, जो डूब गया सो पार, उल्टा है, जो तैरा वो डूब गया। किसमें तैरा? दुनिया के इसमें, भव सागर में ना, सोचा मैं निकल जाऊं, वो तो डूब गया। और जो भगवान के प्रेम में डूब गया वो पार हो गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक एक चीज में हम उसको अनुभव दोनों का बैलेंस करके रखते जाए। और क्या है? फिजिकल वैल्यूज और मटेरियल वैल्यूज का बैलेंस। फिजिकल माने मटेरियल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, इन दो का बैलेंस जीवन में वो जरूरी है। जैसा कि आपने प्रवृत्ति में है, फिजिकल मटेरियल भी जीवन में आवश्यक है, धन भी आवश्यक है, मकान है, कार है, फ्रिज, ये सब जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो भी हैं, लेकिन साथ साथ इसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज का, साधनों को यूज करें लेकिन उसके बंधन में न फंसे। अंत में ये कोई साधन हमारी तरफ, हमें अपनी तरफ न खींच ले। कोई भी चीज ये है, अगर इसने खींच लिया उसके आधार पर फिर हमारा पुनर्जन्म हुआ। अभी तक देखो उस चीज का हम वो अनुभव करते जाए। जो चीज है, मुझे याद है जब मम्मा ने ना शरीर छोड़ा था, 65 का बात है, उसके बाद इधर ना यहाँ पर भोग वगैरह लगा और मम्मा शरीर रखा हुआ था इधर हिस्ट्री हॉल में। तो मम्मा जब ऊपर गए, बाबा ने पूछा, मम्मा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा चुप रही, बोला नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ, अभी शरीर में जाओ और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ शरीर में। तब मामा ऊपर गए और फिर मामा ने बताया अनुभव में कि उसके बाद मैं नीचे आई, शरीर में गई, लेकिन शरीर चूंकि बिल्कुल ठंडा हो चुका था, उसमें कुछ चुरपुर नहीं हुई, इसलिए मैं तो कुछ अनुभव नहीं कर सकी। फिर मैं बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा बच्ची क्या अनुभव करके आई? तो मामा ने बताया नहीं बाबा, वो तो शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसमें जीवन नहीं था, तो इसलिए मैं तो कुछ अनुभव नहीं। तो तब बाबा ने कहा था बच्ची इस अवस्था का अनुभव करने के लिए अब तुम्हें फिर जैसे जन्म लेना पड़ेगा, हर एक कोई जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम जो है जिस भी जन्म में है परम धाम में तो जा नहीं सकते, अभी आत्मा गेट नहीं खुला है। तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके हमें जाना है। अगर इस जन्म में नहीं किया तो उस अवस्था का अनुभव करने के लिए फिर दूसरा जन्म लिया तो फायदा क्या, क्योंकि उस दूसरे जन्म में भी पहले बच्चे होंगे 10-12-15 साल, वो तो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए शरीर का, कोई भी कष्ट हो, कोई भी इसके द्वारा प्रॉब्लम समस्या हो कि हम शरीर छोड़ें और नया शरीर लें। नहीं, जो भी है जैसा है, हमें इस शरीर के द्वारा ही सारे हिसाब किताब चुकतू करना। इसीलिए बाबा ने कहा है अभी अंत समय बच्चों के सामने दो पेपर विशेष होंगे। अंत समय पूरा जीवन भर ज्ञान के जीवन में तो बहुत पेपर दिए ही हैं, तो ये अंतिम पेपर है, ये शरीर का पेपर। क्यों? क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और ये 5 तत्व हमारे सबसे निकट के साथी हैं। पहला जन्म सतयुग से लेकर अंतिम कलयुग के अंत तक का 84 में ये ही प्रकृति से बना शरीर, भले अलग अलग शरीर हैं 84, लेकिन है तो इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर ना। तो ये 5 तत्वों का संबंध मुझ आत्मा से बहुत गहरा है। तो इस कारण से ये जो है इसके द्वारा हमें सारे हिसाब किताब चुकतू करने, पूरे 84 न सही, चलो कम से कम 63 जन्मों के तो हिसाब करने ही है। पहले अगर 21 जन्म छोड़ दें उनमें कोई विकर्म नहीं हुआ, तो 63 जन्मों के पूरे विकर्मों का सारा हिसाब किताब इस शरीर से ही चुकतू करना है। ये अंतिम शरीर है, इस कारण से जब इससे चुकतू करना है तो क्या होना चाहिए? ये प्रकृति का ये जो तत्व है ना, ये जो है पूरे के पूरे मेरे ऑर्डर में चले। ये प्रकृति के तत्व, ये ना कहे कि अंत में अर्थक्वेक हुआ या सुनामी आ गई या फ्लड हुआ उसके कारण विनाश हुआ, अरे सारी दुनिया अगर मरी और मैं भी अगर उसी में मर गया, शरीर छोड़ दिया, तो मेरे और दुनिया में क्या अंतर हुआ। मैं अपनी इच्छा से मरूं, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी देखा, ब्रह्मा बाबा ने ना पास बिल्कुल अपनी इच्छा से अंतक शरीर जितने भी हैं, मैं उन घटनाओं का तो विवरण नहीं करूंगा यहाँ, लेकिन कई ऐसे उस दिन की घटनाएं ऐसे जिसमें ब्रह्मा बाबा ने अनेक बार संकेत दे दिया कि आज मेरा जैसे ये अंतिम दिवस है। और उसके बाद बाबा ने जब शरीर भी छोड़ा तो उसके बाद भी बाबा विदा लेके हिस्ट्री हॉल से गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी ले रहा है, विदा ले रहा है कह के गए। तो ऐसे ही मैं भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ूं। कैसे छोड़ेंगे अपनी इच्छा से शरीर? ये तत्व तो अपनी तरफ अंत तक खींचेंगे, सारा हिसाब किताब ही इनसे है। तो ये जो तत्व है ना, इन तत्वों को हम अपना साथी बना ले, मित्र बना ले। ये कोई हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य न करे। मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है, मित्र मित्र के साथ क्या करता है, समय पर उसका साथ देता है। मुश्किल में मित्र होता है। तो ये तत्वों को हम अपना इतना निकट का मित्र बना लें कि ये हमें पूर्वाभास करा दें कि हाँ अब ये होने वाला। और ऐसी अनेक अनेक घटनाएं हैं। बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, लेकिन बच्चे मुझे यूज करना जानते ही नहीं, कम यूज करते हैं। इस कारण से मैं भी साक्षी होकर देखता रहता हूं। बच्चे कोई लौकिक संबंधी को याद करेंगे, लौकिक मित्र को, लौकिक परिवार को, मैं साक्षी हो जाता हूं। और जैसे ही बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं बच्चों की रक्षा को हाजरा हाजिर हो जाता हूं। इसीलिए हम ये देखें, जब भी मुझे कोई तकलीफ आती है तो क्या मेरी बुद्धि कोई लौकिक संबंधी की तरफ जाती है, वो मेरी मदद करेगा, उसकी मैं मदद लूं? तुरंत ही मुझे एकदम ये होना चाहिए बुद्धि को कि बस बाबा याद आए। वो तो आप सबने द्रौपदी की भी कहानी सुनी होगी ना, इसमें द्रौपदी ने जब कृष्ण जी को वो दिया उलाना, हे प्रभु जब मेरा चीर हरण हो रहा था, मेरी लाज लुट रही थी, तब तो आपने तो बहुत आने में देरी करी, इतनी भरी सभा में मेरी लाज लुटती रही। तो क्या याद दिलाया उन्होंने श्री कृष्ण ने, हाँ द्रौपदी तुम याद करो कि तुमने किसको याद किया। पहले तुमने देखा जब ये वो तुम्हारा लाज का लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो तुमने अपने पति की अर्जुन की तरफ देखा, महाबली हाँ पांचों पतियों की तरफ देखा, और भीष्म पितामह की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा। जब सभी सिर झुका के बैठे रहे, कोई क्योंकि वो तो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, हार चुके थे द्रौपदी को, तो तब जब तुमने जैसे ही मुझे याद किया, मैं नंगे पैर दौड़ा आया और तुम्हारी रक्षा की। हमारा भी यही होता है कि हमें लौकिक और वो सब जहां जहां से सहयोग मिल सकता है वो याद आता है। और यही बाबा उलाहना देता है कि बच्चे तुमने किसको याद किया, मुझे याद किया और तब मैं नहीं आया, तब तो मुझे उलाहना दो। और बाबा का आने का भाव क्या है, वो किसी को भी निमित्त बना के हमारे मार्ग की प्रॉब्लम की उसको दूर कर देगा, कांटा निकाल देगा और समस्या का हल हो जाएगा, हमें सफलता मिल जाएगी। हमने तो हजारों बार अनुभव किया है, हजारों बार नहीं होता, डिले होती है वो हमारे कारण से कि हमें कोई लौकिक बात याद आ। सपोज आप कोई चीज रख के भूल गए, कहीं याद नहीं आ रही है, बहुत जरूरी है, और हम इधर ढूंढेंगे परिवार वालों से, उनसे चारों तरफ बुद्धि को दौड़ाएंगे कहां रखी थी, ऐसे नहीं होती। जब हम हार जाते हैं, फिर मेरा तो अनुभव है, तब अपने पर हंसी आती है, देखो हमने सब याद किया और बाबा को याद नहीं किया। फिर एकांत होके थोड़ा बाबा को याद करते हैं, बाबा ऐसा टच करता है, तुरंत वहां आट डालो, वो चीज मिल जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में रोज अनुभव करो इस बात का। तो इस कारण से ये जितने भी कहानियां शास्त्रों की बनी हुई है, ये सब हमारे आपके ऊपर बनी हुई है, और कोई कहानियां ही नहीं है ये। ये हमें इसको देखना है, इनके ऊपर बनी है। तो इस तरीके से एक एक तत्व को अब हम देख लेते हैं, कैसे हम तत्व को मित्र बनाते चले हैं। और मित्रता किनके बीच में होती है, और इसके लिए अंत समय के लिए एक बात जो बहन जी जैसे बता रहे थे, क्योंकि हमें सारी तैयारियां उस अंतिम क्षण के लिए करनी है। बस एग्जाम में पेपर होता है स्टूडेंट का, साल भर पढ़ेगा, लेकिन लक्ष्य होता है मेरा पेपर। इमेजिन करता है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के देने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, और उस समय कोई किताब वगैरह नहीं, कुछ नहीं, तब वो रिकलेक्ट करता है बुद्धि से और उसमें सारा का सारा लिखता है पेपर पर, उसके आधार पर पास या फेल होता है। तो ऐसे ही हमें अंतिम पेपर को बुद्धि में रखते हुए अपनी पूरी तैयारी करनी है। तो अंतिम पेपर को बुद्धि में रखते हुए तैयारी अगर करते चलेंगे तो कभी भी अंतिम पेपर में फेल नहीं होंगे, ऑलवेज पास एंड पास विद ऑनर्स होकर के निकलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो क्योंकि बाबा ने कहा भारतवासियों के सामने ज्यादातर ये प्राकृतिक आपदा के पेपर आएंगे, और जो विश्व की अनेक आत्माएं हैं उनके सामने एटॉमिक बम वार और उन सब के एटम बम वगैरह के आएंगे, और भारत में ये और दूसरा कौन सा सिविल वार का, कि मनुष्य मनुष्य के प्यासे हो जाएंगे खून। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का ही सोचते थे, अब एक में भी ऊंची जाति नीची जाति वाले और उन सब के बीच में इतना भेदभाव बढ़ता जा रहा है कि बस चरम सीमा अति की तरफ पहुंचता जा रहा है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि इस पेपर के लिए तैयार रहे। तो इस पेपर के तैयारी के लिए पहले तो यह प्राकृतिक आपदा मानो सबसे बड़ा पेपर प्रकृति के पांच तत्वों में भी किसका आएगा, कौन से तत्व का आएगा, पानी का। हाँ, बंबई वालों के सामने और वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट वालों के सामने तो वही आएगा ज्यादातर करके। हाँ, तो इस पेपर से बचने का क्या साधन है, पेपर आया और हम भी दूसरों की तरह सुनामी में बह गए और शरीर छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ, इतना 25-50 साल ज्ञान में चले, वैसे ही मरना था तो दुनिया को भोग कर ही मरते थे। लेकिन नहीं, बाबा ने क्या कहा है, उस पेपर से बचाने के लिए भी मैं बंधा हुआ बच्चों को। कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, मानो जल का पेपर आ रहा है, जल को मित्र बनाया है, तो जल के जो को हम अपना मित्र बना लें, जल के संस्कारों के साथ हम अपने संस्कार, मित्रता उनके बीच में ही होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। जो शराबी होगा उसकी शराबी से मित्रता होगी, जो ज्ञानी योगी होगा उसका योग के साथ, जैसा जो होगा उसकी उसके संस्कार जिसके होंगे आपस में ऑटोमेटिकली वो पास आ जाएंगे, मित्रता हो जाएगी। तो जल का संस्कार सबसे बड़ा कौन सा होता है, शीतलता और फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट का। तो एक हमें ये देखते चलना है कि मेरे अंदर कितना एडजस्टमेंट का संस्कार है, हर आत्मा के साथ मैं एडजस्ट होके चल सकती हूँ आत्मा, तो उसके साथ हम एडजस्ट होके चल सके। कोई ये ना कहे भाई इनके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, इनके साथ मुश्किल है, नहीं, हर एक के साथ हम एडजस्ट हो जाएंगे, दूसरा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जब ये एडजस्टमेंट हो जल के साथ, ये इसका मतलब हमने जल जैसा संस्कार धारण कर लिया, तो जल हमारा मित्र बन गया, और मित्र कभी मित्र की प्राण नहीं लेगा, उसकी समय पर रक्षा ही करेगा। और जल का क्या संस्कार है, जल सदा आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं, बस फ्लो, जहां देखा कि स्लोप है डाउन, बढ़ रहा है आगे। और इसी तरह हम भी जीवन में बढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम भी आए, जैसे जल के सामने बहुत बड़ा पत्थर भी आया, जल रुकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम घाम के पानी अपना आगे बढ़ जाएगा, कोई भी समस्या की वजह से हमारा प्रोग्रेस रुक ना जाए। और जल में क्या है, सबसे बड़ा और गुण है ट्रांसपेरेंसी का। जल अगर साफ होगा ना, ऊपर से देखोगे नीचे का फर्श पर भी जो चीज है वो स्पष्ट नजर आएगी। ऐसा ही मेरा जीवन भी ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा नहीं बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये नहीं। जो अगर अंदर का जो बाबा ने प्यार बोला सबके लिए प्यार हो, स्नेह हो, और कोई आत्मा के साथ मानो मेरे संस्कार नहीं भी मिलते हैं, तो भी ऐसा ना हो कि वो सामने से आ रहा है और मैं नजर बचा के निकल जाऊं, उसकी तरफ देखूं नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं मिलते, पुरानी बात याद आ जाएगी। नहीं, ट्रांसपेरेंसी हो। गांधी जी ने भी कहा था ना, मेरा जीवन एक खुली किताब है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जल में शीतलता का गुण होता है ना, तो ऐसे ही हमारे अंदर भी ये हो। जल में आग पर रख दो जल, थोड़ी देर में उबल जाएगा, लेकिन अपने ओरिजिनल टेम्परेचर में आने के लिए कोई उसे कुछ साधन की जरूरत नहीं, बस उतार के रख दो नीचे, थोड़ी देर बाद अपने आप ही अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। इसी तरह कभी मानो मैं विकारों के प्रभाव में, बहुत जन्मों के संस्कार है, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, घृणा आ गई, कोई बदले की भावना आ गई, उसके वशीभूत हो गया मानो मोमेंट्री, तो मैं उस परिस्थिति से अपने को दूर कर लूं, उस आग से अपने को दूर कर लूं, थोड़े समय में ऑटोमेटिकली हम अपने आत्मा के जो ओरिजिनल स्वरूप सात गुण है उसके अंदर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इसका मतलब मैं धीरे धीरे, आप ऐसे निकालोगे, मैं यहां ये होमवर्क आपको देके जा रहा हूं, पांचों तत्वों के आप 10-10 गुण ऐसे निकालना जो बड़ा इजी है निकालना, डे टू डे लाइफ से कंसर्न है, फिर हम उन्हें धारण करेंगे। कैसे उसे धारण? इस तरीके से जल का अगर ये गुण धारण कर लिया हमने, शीतलता का गुण, एडजस्टमेंट का गुण, ट्रांसपेरेंसी का गुण, सदैव आगे बढ़ने का गुण, कहीं रुके नहीं, आदि आदि कई सारे हैं, तो कभी भी जल हमारी मृत्यु का या शांति दुख का कारण नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जल को हमने मित्र बना लिया। और उससे क्या होगा, इसमें देखो, इवन दुनिया वाले, हमें याद है जब पहला सुनामी आई थी 98 की बात है शायद, 96 इंडोनेशिया में सुनामी पैदा हुई थी, तो वहां से सुनामी चली, तो वहां पर एक भाई आंध्र प्रदेश का था, उसका वहां से उसने फोन किया अपने आंध्र प्रदेश में जिस गांव का था, बिल्कुल कोस्टल विलेज था, समुद्र के किनारे उसका विलेज था, तो उसने तुरंत फोन किया, देखो यहां सुनामी पैदा हुई है, बहुत बड़ी सुनामी है, और ये मद्रास कोस्ट तक और आंध्रा कोस्ट तक ये पहुंचेगी 1.5 घंटे के बाद, आप जिस भी हालत में हो, जैसे हो अभी, तुरंत आप ऊंचे स्थान पर चले जाओ, उस गांव के पास ही एक पहाड़ी जैसी भी थी, तुरंत छोड़ के ये मत सोचो मैं ये चीज ले लूं, ये लो। और उस गांव के ही लोग, वो सब जो गए, उन सब के प्राण बच गए, उस पर्टिकुलर गांव में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, जबकि और दूसरे गांव के नामो निशान भी मिट गए जो कि उसके किनारे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सब ऊपर स्थान पर चले गए, और ये जो जल का ये संस्कार है, ये अब ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन टाइमली उन्हें ये मेंटल फैकल्टी, बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूं, बच्चों के पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, बाबा टच करेगा और तुरंत बढ़ेंगे, इतना मार्जिन नहीं होगा, सेफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों की रक्षा के लिए बाबा बंधा हुआ है। तो ये तो जल की बात हो गई है, कहीं अर्थक्वेक आएगा उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा गुण धारण करेंगे? पृथ्वी में कौन सा बड़ा गुण होता है? सहनशीलता। और पृथ्वी दाता है, हर चीज देती है। देखो एक बीज बोगे आप, 1000 बीज निकल आएंगे, एक पेड़ निकल आएगा, 1000 वो हो जाएंगे। पृथ्वी से ही हमें जल मिलता है, गेहूं, अनाज, चावल, सब कुछ चीज पृथ्वी से, सब्जी, हर चीज, तो दाता है। ऐसे ही मैं अपने अंदर दातापन का गुण धारण कर लूं, देने की भावना। अब लौकिक रीति से तो दातापन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर निर्भर करता है, कोई स्थूल चीज हो, लेकिन बाबा कहता ये दातापन नहीं है, दातापन हम कोई कष्ट में है उसके साथ हम सहयोग कर सके, स्नेह, सहयोग की भावना, प्रेम, शांति हमारे से रिफ्लेक्ट हो, हमारे ऐसे वाइब्रेशन हो, हमारा ऑरा ऐसा हो, वो आत्मा आए और खाली हाथ न जाए। आप दाता के बच्चे हो, धरती को भी दाता, धरती माता कहते हैं, दाता है, सब चीज देती है, आपके सम्मुख से भी कोई वापस न जाए। तो जब ये दातापन का गुण धारण कर लोगे तो क्या होगा, धरती भी बंधी हुई है हमारी रक्षा के लिए। जितना अर्थक्वेक आएगा, कुछ दिन पहले मुरली भी थी ना वरदान में, मुरली के वरदान में आया था, बाहर तक बहुत भयंकर धरती का वो होगा, महाविनाश होगा, बच्चों के लिए वो सूली से कांटा हो जाएगा, बिल्कुल आपके पास तक आके बस जरा सा क्रैक मकान पड़े और जगह तो सारा। और हमारे पास तो बहुत उदाहरण है, यहाँ तो समय के अभाव में हम ज्यादा बता नहीं सकते। तो ये ऐसा होना चाहिए, धरती का ये दातापन का गुण अगर हमारा होगा तो धरती जितना भी भयंकर से भयंकर तूफान, और इसमें वो हमें याद आता है कैलिफोर्निया में जब पहला तूफान आया था अर्थक्वेक, चारों तरफ विनाश हो गया। एक अमेरिकन भाई का रिट्रीट सेंटर था, अमेरिकन था वो, ज्ञानी भी नहीं था, लेकिन उसके रिट्रीट सेंटर में बहुत कम नुकसान हुआ, चारों तरफ बिल्डिंगें गिर गई, उसके बिल्डिंग में तो दो एक क्रैक वगैरह आए, कोई भी नहीं गिरा, कोई भी ना वो नहीं हुआ नुकसान। तो मीडिया वाले आए कुछ दिन के बाद उसके, भाई आपका बिल्कुल चारों तरफ इतनी बिल्डिंगें गिर गई, इतना विनाश हुआ, आपके तो बीच में रिट्रीट सेंटर है, कुछ भी नहीं हुआ, आपने किस मटेरियल का बनाया है अपना मकान? तो वो कहता है कि भाई हमने तो कोई मटेरियल का ऐसा नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मैंने धरती माता के साथ, मैं अमेरिकन था, लेकिन मैं रोज इसको सुबह उठ के प्रणाम करता हूं कि हे मदर अर्थ, अपनी भाषा में बताया, आप मेरी माँ हो, हम आपके बच्चे हैं, अगर हमारे द्वारा आपको कोई कष्ट हो रहा है हम उसकी माफी चाहते हैं, और आपके द्वारा हम ये चाहते हैं कि आप सदा हमारी रक्षा करते रहो, आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, और मैं धरती से रोज वार्तालाप करता हूँ, आई टॉक विद मदर अर्थ, और इसका मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है कि देखो आज यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जब अज्ञानियों का ऐसा वार्तालाप का ये परिणाम हो सकता है, तो हम ब्राह्मण वत्सों का, जो बाबा कहता है आप तो रोज ये तत्व जो है, और कौन है ये तत्व, भी देवता के रूप में गायन है, धरती माता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये भी देवता में गायन है, और आप तो चैतन्य होवनहार देवता हो, देवताओं की देवताओं से ही तो मित्रता होती है, इसीलिए हाथ बढ़ाओ और फिर इसका अनुभव करो। हमें याद है जब बाबा की ये सारी मुरली चली थी, एक सीरीज ऑफ मुरली बहुत अच्छी थी, हमारा पर्यावरण जागृति अभियान एक निकल रहा था केरल में, वहां कनानूर, कनूर वो जगह थी, वहां पर हम थे, तब तो ये सब मुरली वगैरह वैसे आती थी, एक तब टेली वो था पॉइंट टू पॉइंट, उसके द्वारा वहां मुरली मिली, और बाबा ने कहा था आप तत्वों के साथ ये प्रयोग करो, उनसे हाथ मिलाओ, वो आप चैतन्य देवता हो, वो तो फिर भी जड़ देवता, लेकिन वो आपके चरण स्पर्श करेंगे अगर आपकी वार्तालाप उन तक पहुंचेगी। बहुत बाबा की स्ट्रांग मुरली चली थी, तब हमने वहां पढ़ा, हम लोगों ने निर्णय किया, 10-12 हम लोग पर्यावरण अभियान में थे और वहां सेंटर की 5-6 बहनें थी, कि कल सुबह 4 बजे समुद्र के किनारे, वो शहर था कनानूर, तो वहां जाके हम योग करेंगे, और तब जो समुद्र का जो जल देवता है उसके साथ हम ये वार्तालाप करेंगे जो बाबा ने उसमें सिखाई थी। अगले दिन सुबह गए 3:30 बजे, और वहां जाके समुद्र से बहुत दूर है, बिल्कुल शांत समुद्र था, और बहुत वहां हम लोग योग करने लगे, 4 बजे से योग का, सबने यही संकल्प रखा कि हे जल देवता, आप भी देवता हो, हम सब होवनहार देवताएं हैं, आओ हम देवताएं आपस में हैंडशेक करें और हाथ मिलाए, इस सृष्टि को हमें पावन बनाना है, हम सब मिलकर के इस सृष्टि को, तत्वों को सब पावन बनाते हैं, और यदि आप तक हमारी भावनाएं वार्तालाप पहुंच रहा है तो आप आओ और हम होवनहार देवता चैतन्य देवताओं के चरण स्पर्श करो। तो हम तो वहां से लगभग 1.5 फरलांग दूर बिल्कुल ड्राई बालू में बैठे हुए थे, समुद्र तक, और समुद्र बहुत दूर था, कोई भी लहरें नहीं थी। 4 बजे शुरू किया, 4:15 हुआ, 4:30 हुआ, 4:45 हुआ, बस जब 5 बजने में 5 मिनट थे और बस सब योग में बैठे और गहन तपस्या में, तब पता नहीं कहां से एक लहर इतनी तेजी से आई समुद्र की तरफ से, और वो पानी आया और हम लोग जो 12-15 लोग बैठे थे सबके चरण स्पर्श करके जैसे वो लहर वापस समुद्र में लौट गई। ऐसे कई है, वेदांती बहन ने अपना अफ्रीका का सुनाया था कैसे वहां पर ये कई वर्षों तक वहां पर अकाल जैसा पड़ा, और ये उनसे ही हम लोगों ने ड्राइव करा था, और वहां पर आसपास के गांव वाले आते थे, हम नमक नहीं बना पा रहे क्योंकि नमक बनता ही ऐसे किनारे गड्ढे कर लेते हैं वो, समुद्र का जब ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार आया पानी भर गया, उसके बाद लहर तो चली जाती है, पानी भरा का भरा रहता है, और सूर्य की गर्मी से पानी उड़ जाता है, नीचे जो बसता है वो नमक होता है, नॉर्मल प्रोसीजर। वो कहते हैं समुद्र में इतना, पिछले 3 वर्षों से समुद्र में इतनी भर्ती नहीं आ रही है कि वो हम ऐसा नमक, और हमारा तो अकाल पड़ रहा है जैसे। अब बहने रोज योग करने जाती थी वहां, तो उन्होंने कहा ये तो देवियां हैं, आप बहन जी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो। तो बहनों ने कहा ठीक है, इनकी भावना है, वहां तो योग करने जाते ही थे शाम को, और उस वर्ष इतना तेजी से ना ऐसे आया, उनका पिछले बैलेंस भी जैसे चुकतु हो गया, और बहुत उनको अपने बिजनेस में फायदा हुआ। तो बाद में वो बहनों की आरती उतारने के लिए और बहुत जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं ना वो लोग आए। तो ये देवताओं से, इनसे हम वार्तालाप तो करें। और ब्रह्मा बाबा ने भी ये बताया था अपने अनुभव में, वो तो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, कि तत्वों से हम रोज वार्तालाप करें, रोज 5-10 मिनट जैसे हम मन से वार्तालाप करते हैं संकल्पों से, और बाबा ने जो बताया है ऐसे तत्वों से रोज, तो ये तत्वों को जैसे हम अपने अधीन कर लेते हैं, तो ये जल देवता का है कि किस प्रकार से हम जल देवता का एडजस्टमेंट का गुण धारण, जल के साथ पृथ्वी का, बाद में अर्थक्वेक वगैरह से बचने के लिए हमारा कैसा हो, अर्थक्वेक के लिए जो दातापन का गुण, बाद में फिर धरती में और भी गुण होते हैं, सहनशीलता होती है, धरती अचल होती है, अटल होती है स्थिति, तो वो सब, लेकिन मेन बात है दातापन। कोई हमारे सम्मुख कोई आत्मा आए खाली ना जाए, बस हमारे से कोई ना कोई गुण शक्ति और उसको धारण करके जाए। इसी तरह वायु का क्या गुण होता है, वायु का गुण होता है हल्कापन। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, धरती हर चीज को नीचे खींचती है, तो हम हर परिस्थिति में हल्के रहना सीखे, भारी ना हो। कभी कोई परिस्थिति आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, हम बस योग हमारा टूट जाए और बस उदास हो जाए, क्या होगा कैसे होगा, नहीं। बाबा ने कहा हल्के रहने का गुण जीवन में धारण किया होगा तो कभी भी वायु साइक्लोन, अभी भी नॉर्दर्न इंडिया और हैदराबाद में भी कल परसों आ रहा था, न्यूज में देख रहे थे, बहुत बारिश हुई और बहुत हवा तेज वगैरह चली, और नॉर्दर्न इंडिया में और इधर तो काफी सारा हुआ और काफी लोग मर भी गए बहुत जगह। ये तो एक छोटा सा रिहर्सल था, अंत समय में इस तत्व का भी बहुत भयंकर प्रकोप होना है, और विशेष करके ऐसी जगह जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे हैं, इतना तेज। अमेरिका के पास सब चीज है लेकिन इस प्रकृति के आगे वो भी नतमस्तक हो जाता है, तत्वों के आगे। ये भी उसे महसूस कराते हैं कि तुम सर्वशक्तिवान नहीं हो, सर्वशक्तिवान कोई और है, प्रकृति है, ये 5 तत्व हैं, ईश्वर है, नहीं तो फिजिकल लेवल पर तो अमेरिका जैसा शक्तिवान कोई नहीं है। तो ये है वायु की तरह हल्के रहने का गुण सीखेंगे तो जितना साइक्लोन आएंगे कोई भी हमारी मृत्यु का, हमारी दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। इसी तरह और क्या है, अग्नि, अग्नि का स्वरूप प्रकृति में क्या है, सूर्य, सूर्य अग्नि का स्वरूप है। अग्नि का कौन सा विशेष गुण होता है, अग्नि हर चीज का रूप बदल देती है, जो भी चीज अग्नि में डाली जाती है। तो बाबा ये कहता है आपका स्वरूप भी ना अग्नि की तरह वॉल्केनिक, जो बाबा ने कहा है ज्वालामुखी योग, कई बार बाबा कहते हैं, तो ज्वालामुखी योग करो, उससे क्या होगा, आपके सम्मुख जो आएगा ना वो प्रकृति आपकी दासी, सतयुग में तो होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, यहां पर महसूस होना चाहिए प्रकृति हमारी दासी है। इस अवसर पर मुझे एक गीत का भी याद आ गया, जब ये गीत बजा रहे थे ना, हाँ बाबा तुम्हारा याद आया, जब चिड़िया चहकी, तो वो भी था ना कुछ, तो मुझे एक घटना याद आ गई, जब ब्रह्मा बाबा थे, हम हिस्ट्री हॉल में आया करते थे, बाबा क्लास कराया करते थे, गुरुवार के दिन भोग लगता था, तो तीन संदली पड़ियां, एक इधर, एक बीच में, एक इधर, इधर बाबा बैठते थे, इधर मम्मा, और बीच की संदली खाली रहती थी, गुरुवार के दिन जो जो संदेशी होती थी वो भोग लगाती थी, और बाकी दिन अपना जो पार्टी आती थी वो वन बाय वन आके अपना अनुभव सुनाते थे और क्या प्रेरणा लेकर जा रहे हैं वो जाते थे। तो गुरुवार को क्या होता था, देखो कैसे, हाँ मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी प्रकृति को दासी किया हुआ था, साधारण रूप था, लौकिक में तो गुरु में एक जरा सा गुण या शक्ति आ जाती है, बहुत बयान हो जाता है, चाहे साईं बाबा का हो चाहे किसी का, ये निकाल देते हैं, भभूत निकाल देते हैं, फूल कर देते हैं, लेकिन बाबा कुछ नहीं, संदेशी गुरुवार को आके बाबा मुरली चलाते थे हमेशा की तरह, मुरली पूरी हुई भोग आता था, संदेशी आकर बैठती थी, बाबा बस थोड़ा दृष्टि दी, कहते बच्ची गो सुन कम सुन, जाओ और आओ, बाबा को ये खेल पाल ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन संदेश भी बच्चों के लिए लाना होता था, तो बस संदेशी को जरा सी दृष्टि दी, हाँ बच्ची बस, और संदेशी तुरंत उड़ जाती थी, और उसके बाद आके भोग लाके वहां रखती थी, संदेश सुनाया, उसके बाद हाँ जो भोग का वो बर्तन जो होता था ना, वो डिब्बी खोल के जो भी भोग बना, हलुआ या जो कुछ चीज होती थी, बाबा हथेली पर थोड़ा रखा, उसके बाद बाबा कहते थे हाँ बच्ची आओ, बच्ची आओ आओ, किसको बुलाते थे, एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल जैसी ना, वो कहीं से बस चू 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 करके आई, पहले मेज पर बैठी, फिर बाबा के हाथ पर बैठ जाती थी, वो होता था बस खाते थे, दो तीन चार बार चुगा, उसके बाद हाँ हो गया बच्ची ठीक है जाओ जाओ, और उसके बाद वो उड़ जाती थी, और वो जो चिड़िया है वो मतलब गई और फिर बाकी दिन दिखाई नहीं देती थी। हमें याद है 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा और 21 जनवरी को जब भोग लगाया गया उस दिन अग्नि संस्कार के बाद, उस दिन भी वो चिड़िया आई, बस ऐसे इधर उधर उधर चारों तरफ बस बेचैन सी घूमती रही, और उसके बाद फिर वो कभी भी दर्शन नहीं हुए। तो ये जैसे ना, जब जो योगी होता है और भक्ति मार्ग में पढ़ते थे कि ये सब प्रकृति वश में होती थी, जब साधारण दुनिया के लोग तानसेन ऐसा राग निकालते थे, दीपक राग, वो जल जाया करते थे दीपक अपने आप, मल्हार राग निकालते थे, वर्षा होने लगती थी, जब द्वापर युगी लोगों में इतना, ये तो भगवान का साकार रथ ईश्वर, तो बाबा हमने कितना देखा, और कभी भी बाबा ने इन चीजों की पब्लिसिटी नहीं की, कुछ नहीं, ना बच्चों को कहते थे, बिल्कुल साधारण वे में, चलो चिड़िया तो ये है कि बड़ी अहिंसक और प्यारी लगने वाली चीज है, लेकिन एक बार यही डिस्पेंसरी के सामने, तब ये सब कच्चा हुआ करता था, और एक बार जरा सब हाँ थोड़ा हल्ला सा मचा हुआ था, भाई लोग थे तो देखा एक सांप आया निकला, और एक दो भाई डंडा लेके उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए बस दौड़ रहे थे इधर उधर, तो बाबा उधर से आए किचन का तरफ से, बच्चे क्या हो रहा है, कि बाबा ये सांप है इसको पकड़ रहे हैं मार, तो बाबा ने कहा रे ये क्या कर रहे हो बच्चे को, हर एक के लिए बाबा का बच्चा बच्ची, कभी भी इसके अलावा बाबा ने चाहे कितना हिंसक हो चाहे कुछ हो कोई भी कभी भी और कोई बात नहीं निकली, तो बच्चे को मारो नहीं मारो नहीं पकड़ो। एक बलदेव भाई होते थे जयपुर के, तो वो भी वहीं थे, बच्चे हाँ तुम इसको पकड़ो और मटका, एक भाई को बोला मटका लाओ, वो कुछ मटका सा ले आया, इसको पकड़ के इसमें डाल देना, वो थोड़ा हिचकने लगा भाई हाँ अब सांप को पकड़ना इतनी सिंपल बात तो नहीं है, कोई अनुभव नहीं। अरे बच्चे डर रहे हो, चलो चलो कोई बात नहीं, बाबा करता है। बाबा आगे बढ़े, सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं। और ये उसने भी कहा, उसको भी हिम्मत आ गई, नहीं बाबा मैं करता हूँ। देखो सब कह रहे हैं कि अरे बोलने वाला कौन है, बाबा बोल रहा है। तो बस उसने फिर आया, पकड़ा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सहज भाव से पकड़ करके मटके में डाला, ऊपर कपड़े वगैरह बांध करके कहा इसको जंगल में छोड़ाओ। तो देखो ये प्रकृति दासी का प्रतीक है। केवल तत्व नहीं, हिंसक हो अहिंसक हो, पशु पक्षी जीव जंतु, वो सब आपके वश में हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जो सन्यासी बहुत अच्छे तपस्वी होते थे उनके सामने शेर और बाघ ये सब आके बिल्कुल शांति से बैठ जाया करते थे। तो ये प्रत्यक्ष यहां पर देखा। अब बाबा ने जो किया, बाबा ने कहा ना ब्रह्मचारी बने, अब ब्रह्माचारी बनो। हमारी भी तपस्या ऐसी हो कि ये पशु पक्षी जीव जंतु हमारा मनुष्य आत्माओं तक ही वाइब्रेशन या ऑरा न पहुंचे, इन तक भी पहुंचे और वहां से हमें ऐसा प्रॉपर रिस्पांस आना चाहिए। ये रिस्पांस जब होगा ना ऑटोमेटिकली, इसमें कोई भी भय, क्योंकि गुणों में एक निडरता का भी गुण बाबा ने बताया हुआ है। तो इस रीति से ये अग्नि का है। अंत समय में क्या होगा, अग्नि में जो जैसे स्वरूप बदलने का गुण होता है, कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है, ऐसी हमारा जितना भी वॉल्केनिक रूप होगा, ज्वालामुखी रूप होगा, बस जो हमारे सम्मुख है। बाबा कहता है अंत में भीड़ लगेगी, एक अक्षर भी बोलने का किसी को समय नहीं होगा। रोता हुआ आए, आपके सम्मुख आए, हंसता हुआ चला जाए, उसका रूप बदल जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख का अनुभव करके हंसती हुई चली जाए। ये आपकी अंतिम सेवा है, अग्नि स्वरूप की सेवा, वॉल्केनिक रूप की सेवा, जो कि बाबा अब चाहता है। और ये देखते थे बाबा के सम्मुख, अंत में हमने तो 17-18 जनवरी को हम यहीं थे जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जैसे ही हमारे सम्मुख वो आत्माएं आएंगी, उस समय तो हमने खुद अनुभव किया कि बाबा के सम्मुख जाते थे हमारे मन में जो संकल्प होता था तुरंत बाबा तक पहुंच जाता था, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। वही स्थिति बाबा अब हम बच्चों की चाहता है कि हमारे भी अपने संकल्पों पर ऐसी विजय हो कि हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ सके। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे अपने संकल्प ही मिक्स हो जाते हैं, तो हम पहचान नहीं पाते दूसरे के ये संकल्प हैं या मेरे संकल्प हैं, हम उनके संकल्पों को पूर्ण ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या बने हुए होंगे, हमारे अंदर कोई इच्छा या संकल्प नहीं होगी, तो जो भी विश्व की आत्मा हमारे सम्मुख कोई भी भावना संकल्प लेके आई है, हम तक पहुंचेगा और हमारे मुंह से क्या निकलेगा, तथास्तु। मुंह से ना निकले, अंदर से वाइब्रेशन ऐसे निकलेगी और वो आत्मा अनुभव करेगी, उसे जीवन में महसूस होगा उसके संकल्प पूरा हो गया। जिस श्रद्धा जिस भावना, इसी को ही तो भक्ति मार्ग में लिख दिया है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, भगवान सर्वव्यापी है। क्योंकि हम सबके अंदर, एक एक के अंदर सब आत्माओं को भगवान के दर्शन होंगे, उनकी इच्छाएं हमारे द्वारा पूर्ण होंगी, इसीलिए हमें ऐसा स्वरूप धारण करना है। और अंतिम तत्व कौन सा है, पांचवा आकाश। तो आकाश तत्व का क्या गुण है विशेष, विशालता, महानता। तो ऐसे ही हम अपने अंदर इतना महानता का गुण, विशालता का गुण वाले का क्या स्वरूप होगा, किस गुण से उसकी प्रत्यक्षता होती है, क्षमा भाव। जो भी महान आत्माएं होके गए, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, कोई भी जो धर्म पिता आत्माएं होकर गई हैं, उनका सबसे बड़ा गुण था क्षमा भाव। अब कार्यों पर भी उसने उपकार, जन साधारण में अगर हमने उपकार किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई हमारे प्रति कंटिन्यूअस निगेटिव हो, हम उसके प्रति निगेटिव बिल्कुल ना हो, उसको क्षमा करके पॉजिटिव हो, ये है क्षमा भाव, ये आकाश का गुण। और आकाश जैसी विशालता अगर हमने धारण की होगी ना, तो क्या होगा कि ये क्षमा भाव हमारे अंदर आ जाएगा। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, उसके मन में कोई ना कोई जीवन की घटना आ जाएगी, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरी प्रोग्रेस में बाधा डाली, इसने मेरे सामने ये रोड़े अटकाए, कुछ भी, हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन नहीं, हर एक के प्रति हमारी क्षमा की भावना, ब्रह्मा बाबा का, दादी जी का हमने देखा, बाबा के साथ हम 7-8 साल रहे, अनेका अनेक ऐसे अवसर आए, इतना इतना लोगों ने अपमान भी किया, इतना ये, लेकिन कभी बाबा की उनके प्रति दया की दृष्टि से दूसरी दृष्टि नहीं हुई, बाबा क्षमा करते चले। तो इसीलिए अब पांचों तत्वों के ऊपर भी हम विजय प्राप्त तब कर सकते हैं। यहाँ तो एक एक दो दो गुण का वर्णन किया, लेकिन आप सोचो एकांत में विचार सागर की, और उन तत्वों के और क्या क्या गुण हैं, उनके साथ मित्रता कर लो, तो हम भी बाबा का हाथ और साथ का जीवन में सदा अनुभव करते रहेंगे, विजयी हो जाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति।
किनारा मिल गया किनारा।